संयुक्त राष्ट्र समाचार से प्रस्तुत है साप्ताहिक विश्व परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 14 जुलाई 2023 के बुलेटिन की सुर्खियां। भारत और चीन सहित 25 देश बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता के गर्त से बाहर निकालने में कामयाब। दुनिया भर में भीषण कर्ज संकट से अरबों लोगों के विकास के लिए गंभीर खतरा दरपेश। सूडान के पश्चिम दारफूर में 87 आम लोगों को मारकर सामूहिक कब्र में दफनाए जाने की कड़ी निंदा। बांग्लादेश में अधिकार नामक मानवाधिकार संगठन के पैरोकारों का उत्पीड़न रोके जाने की पुकार और एड्स की रोकथाम के लिए प्रभावी नेतृत्व और विज्ञान का सहारा लिए जाने की जरूरत पर जोर। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे समाचार आपको हर दिन खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत और चीन सहित 25 देशों को बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता के गर्त से बाहर निकालने और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को आधा करने में कामयाबी मिली है, मगर विश्वभर में 1 अरब 10 करोड़ लोग अब भी निर्धनता में जीवन गुजार रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2019 के बाद से अब तक 12 करोड़ से अधिक अतिरिक्त लोग खाद्य अभाव का शिकार हुए हैं। कुछ और ब्यौरे के साथ सचिन गौड़।
वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के जरिए निर्धनता में आई गिरावट को आंका जाता है और आम लोगों के दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बुनियादी सेवाओं की सुलभता समेत अन्य क्षेत्रों में निर्धनता का आकलन किया जाता है। 2000 से 2022 के विश्लेषण में 81 देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नतीजे दर्शाते हैं कि 25 देशों ने केवल 15 वर्षों के भीतर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को आधा करने में सफलता दर्ज की है। इन देशों में भारत, कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरस, इंडोनेशिया, मोरक्को और वियतनाम समेत अन्य देश हैं। भारत में निर्धनता उन्मूलन प्रयासों में विशेष रूप से बड़ी प्रगति दर्ज की गई, जहां पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। चीन में 6.90 करोड़ और इंडोनेशिया में 80 लाख लोग अब निर्धनता के दायरे से बाहर हैं। लेकिन अनुमानों के अनुसार 1 अरब 10 करोड़ लोग अब भी निर्धनता में जीवन गुजार रहे हैं। UNDP के प्रशासक एकिम स्टाइनर ने कहा,
Using the MPI lens, we are seeing how 1.1 billion people worldwide are...
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के इस्तेमाल से हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व भर में 1 अरब 10 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। हम ये बेहतर ढंग से जान सकते हैं कि गरीबी कहां पर है, निर्धनता लोगों को किस तरह से प्रभावित करती है और उसके विश्लेषण से लक्षित नीतियों को अपनाया जा सकता है। इसी सप्ताह विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार पिछले साल 73 करोड़ लोगों को भूख की मार झेलनी पड़ रही थी। 2019 की तुलना में ये 12 करोड़ लोगों की वृद्धि को दर्शाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने आगाह करते हुए कहा है कि विश्व की आधी आबादी उन देशों में रहती है जो स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश करने की तुलना में कर्ज की किस्तें चुकाने में अधिक धनराशि खर्च करने के लिए मजबूर हैं। UN प्रमुख ने इस स्थिति को विकास के लिए एक बड़ी तबाही करार दिया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संकट कार्रवाई समूह द्वारा जारी ए वर्ल्ड ऑफ डेथ नामक इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 52 देश फिलहाल गंभीर कर्ज संकट से गुजर रहे हैं, जो कि विकासशील दुनिया का लगभग 40% हिस्सा है। इसके मद्देनजर UN महासचिव ने उन्हें तत्काल वित्तीय राहत प्रदान किए जाने की मांग का समर्थन किया है। UN प्रमुख ने जोर देकर कहा कि पिछले वर्ष वैश्विक सार्वजनिक ऋण 92 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिसका 30% भार विकासशील देशों पर है। UN महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने सचेत किया कि अनेक देशों की सरकारों को टिकाऊ विकास लक्ष्यों में निवेश करने के बजाय ब्याज की किस्तों के भुगतान को प्राथमिकता देनी पड़ती है, जिसका असर 3 अरब से अधिक लोगों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सूडान के पश्चिम दारफूर इलाके में 87 आम लोगों को जान से मार दिए जाने और एक सामूहिक कब्र में दफना दिए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साथ ही दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने की भी मांग की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान ने कहा है कि ICC इस घटना समेत दारफूर क्षेत्र में युद्धापराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अन्य आरोपों की जांच करेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बताया कि पीड़ित मसालित जातीय समुदाय के सदस्य हैं, जिनकी अर्धसैनिक बल RSF और उसके सहयोगी गुट ने मिलकर कथित रूप से हत्या कर दी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों पर इन शवों को क्षेत्रीय राजधानी एल जनेइना के बाहरी इलाके में एक सामूहिक कब्र में दफनाने का दबाव डाला गया और मृतकों का सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने इन हत्याओं की कठोरतम शब्दों में निंदा की है और घटना के दोषियों की तत्काल जवाबदेही तय किए जाने की मांग की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने दारफूर क्षेत्र में युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों की जांच कराए जाने की बात कही है। इसके तहत मसालित समुदाय के इन 87 सदस्यों की हत्या किए जाने की घटना की भी जांच की जाएगी। कोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में जनसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्धापराधों और इन अपराधों को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति की जाँच किए जाने की बात कही गई है।
संयुक्त राष्ट्र के कुछ स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बांग्लादेश सरकार से मानवाधिकार संगठन औधिकार के प्रतिनिधियों के विरुद्ध उत्पीड़न की तमाम गतिविधियां बंद करने और निर्धारित विधि प्रक्रिया का सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस मामले में औधिकार जैसे मानवाधिकार संगठनों और उनके प्रतिनिधियों को खामोश करने के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किए जाने के लक्षण नजर आते हैं, जिन्होंने जबरन गुमशुदगियों व न्यायतर मौतों के मामलों में दस्तावेज तैयार किए हैं और इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रक्रियाओं के साथ सहयोग किया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की बदले की कार्रवाई के बहुत गंभीर प्रभाव होते हैं और ऐसा किए जाने से अन्य पैरोकारों व संगठनों के लिए मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने और संयुक्त राष्ट्र इसके प्रतिनिधियों व प्रणालियों के साथ सहयोग करने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि औधिकार संगठन का मामला बांग्लादेश में मानवाधिकार पैरोकारों व संगठनों का लगातार उत्पीड़न किए जाने और उन्हें निशाना बनाने के चलन को उजागर करता है। HIV/AIDS मामलों पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNAIDS की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक एड्स का खात्मा करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग मौजूद है, जिसके लिए मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ विज्ञान को अपनाने, विषमताओं का मुकाबला करने और सतत निवेश सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होगी। UNAIDS ने गुरुवार को कहा कि इस चुनौती के उन्मूलन के प्रयास काफी हद तक राजनीतिक और वित्तीय विकल्पों के चयन पर निर्भर करते हैं। एक रिपोर्ट सुनिए अंशु शर्मा से।
UNAIDS की नई रिपोर्ट के अनुसार बोत्सवाना, एस्वतीनी, रवांडा, तंजानिया और जिम्बाब्वे को 95-95-95 लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिली है। मतलब ये कि HIV के साथ रह रहे 95% लोगों को अपनी अवस्था के बारे में जानकारी है। जिन लोगों को मालूम है उनमें 95% लोग जीवन रक्षक एंटी रेट्रोवायरल उपचार पर हैं और उपचार करा रहे 95% लोगों में वायरल दबाया गया है। भारत के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में अनुमानित 24,70,000 लोग HIV से पीड़ित थे। UNAIDS में एशिया प्रशांत पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रीय निदेशक एमोन मर्फी बताते हैं,
इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन बोथ ऑफ दीज एरियाज।
भारत ने पिछले दशक में इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति की है। हमने वहां ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता का अधिकार अर्जित करते देखा है। HIV से संबंधित भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और सहमत समलैंगिक आचरण को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन भारत के लिए कार्रवाई को पटरी पर लाने और फिर से सक्रिय करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण है।
UNAIDS में क्षेत्रीय निदेशक एमोन मर्फी के शब्द। यूएन एजेंसी के अनुसार वर्ष 2030 तक एड्स के खात्मे की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।